आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
बहुत से लोग अपने जीवन में तनाव के कारण बिगड़ी नींद की समस्या का सामना करते हैं, जिसमें प्रवासन के अनुभव से जुड़ी चुनौतियां भी शामिल है। अनिद्रा और बुरे सपने जैसी समस्याएं न केवल वयस्कों को बल्कि बच्चों को भी प्रभावित कर सकती हैं। जाने कि नींद की गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे करें, खराब नींद की आदतों की पहचान कैसे करें और खुद के लिए या किसी प्रियजन के लिए मदद कब लेनी चाहिए। आप अपने दोस्तों या परिजनों से बात करके देखेंगे तो पाएंगे कि सबके नींद के पैटर्न अलग अलग होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में सहायक प्रोफेसर, नींद वैज्ञानिक और महामारी विज्ञानी फातिमा याकूत एक अच्छी नींद के विभिन्न पहलुओं को समझाती हैं। वयस्कों के लिए 7 से 9 घंटे की नींद सुझाई जाती है, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से अलग अलग हो सकती हैं। सोने की कोशिश के 15 से 20 मिनट के भीतर नींद का आ जाना और वैज्ञानिक रूप से अबाधित स्लीप एपिसोड को बनाए रखना भी अच्छे नींद के महत्वपूर्ण पहलू हैं। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि आप सुबह उठने पर कैसा महसूस करते हैं।
7 to 9 hours is recommended, but it can vary from person to person, and you are the best person to decide whether or not you need 7 hours, 9 hours. Then there's people who generally keep tossing and turning in bed for a very long time before they doze off to sleep. Their sleep is not considered great, and then if they are waking up regularly, it's also not a sign of healthy sleep. More importantly is how you feel when you wake up. That's the biggest indicator of how healthy your sleep is. If you feel refreshed and rested, then you had a good night's sleep.
सोने की आदतें और आराम करने के तरीके सांस्कृतिक रूप से भी भिन्न हो सकते हैं। गर्म प्रदेश जैसे मेडिटेरेनियन क्षेत्र या मध्य और दक्षिणी अमेरिका जैसी संस्कृतियों में दोपहर की एक झपकी लेना, जिसे सिएस्टा कहते हैं, उनके आराम करने के तरीकों का हिस्सा है। सहायक प्रोफेसर फातिमा याकूत कहती हैं कि दिन के बीच में एक छोटी पावर नैप लेना वास्तव में आपको ताजगी दे सकता है।
A short nap, not more than 30 minutes, can help you with going through your day after having a long day or long morning. But if napping is like a mini sleep, more than half an hour, 20 minutes, then it does impact your nighttime sleep.
नींद की गुणवत्ता व्यक्ति की जिम्मेदारियों, काम के घंटों और उद्योग पर भी निर्भर करती है। सहायक प्रोफेसर फातिमा याकूत कहती हैं कि प्रवासियों के लिए शुरुआत में नींद के पैटर्न में बदलाव आना सामान्य बात है।
People leave their home country, their family and their comfort zone. They come to a new place and there's job uncertainty, there's a new culture, a new society. So settling in takes time and there's jet lag. So it disturbs their sleep rhythm and increases their risk of experiencing poor sleep. Then if those stresses are not removed, that eventually leads to chronic sleep issues.
2019 में मोनाश यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि 75% से अधिक शरणार्थियों और शरण मांगने वालों, चाहे वे वयस्क हों या बच्चे, ने मध्यम से गंभीर नींद की गड़बड़ियों की शिकायत की। क्रिस्टन सेंडन मेलबर्न स्थित विशेष शरणार्थी ट्रॉमा एजेंसी फाउंडेशन हाउस की प्रैक्टिस लीडर हैं। वे कहती हैं कि नींद में गड़बड़ी उनके ग्राहकों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD के सबसे स्थायी लक्षणों में से एक है।
For refugees and asylum seeker population, sleep disturbance is one of the most common reported symptoms. In a study conducted in 2019, more than 75% of refugees and asylum seekers reported moderate to severe sleep disturbances. So we know people who experience post-traumatic stress disorder, sleep disturbances, it's actually one of the most persistent symptoms after treatment. So around 50% of people who have received some kind of treatment for their trauma report sleep disturbances continue.
लेकिन ये केवल प्रवास से पहले के ट्रॉमा, चाहे वह आपका हो या आपके किसी प्रियजन का, ही नहीं है जो आपकी नींद को प्रभावित कर सकते हैं। सेंडन समझाती हैं।
We know that cultural differences exist in sleep and wake patterns, but also settlement factors such as working shift that impacts keeping regular sleep cycles or staying up late or waking up early to kind of keep the hours of the country of origin so they can speak to loved ones or follow news or emerging events overseas impact the sleep patterns of the clients that we see.
सुश्री सेंडन कहती हैं कि प्रवासन आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है, लेकिन नींद की अनियमितता भी आपके प्रवास के बाद बसने में समस्या उत्पन्न कर सकती है।
Be sure to know how to get support early on, because research suggests that there's a correlation between getting adequate sleep and recovering from trauma and recovering from the impact of migration stress.
सिडनी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल वेस्टमीट की नींद क्लिनिक में काम करने वाले बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सेटन नवजात से लेकर 18 साल तक के बच्चों में नींद की समस्याओं का निदान करते हैं। वे बताते हैं कि नींद की समस्या वह है जिसे माता पिता या सामान्य चिकित्सक एक समस्या के रूप में देखते हो।
Sometimes people worry, you know, my son or daughter, should they go to the sleep clinic or should they not? And the way to tell is there a sleep problem there? Are they waking at night? Is their sleep disturbed? Do they have trouble getting to sleep? And really importantly, are they tired the next day? And sleep problems too affect the mental health of young people and cause a lot of stress. And again, people worry, you know, does my child's mood disorder cause a sleep problem, or does the sleep problem cause the mood to be depressed? It doesn't matter, because all these things are interrelated.
Dr. Seton कहते हैं कि ये मानना गलत है कि परिवार के साथ सोना स्वाभाविक रूप से नींद की समस्याओं का कारण बन जाता है। सहनींद यानी co-sleeping तब एक समस्या बनती है जब ये नींद की कमी का कारण बनती हो।
In its pure sense, we don't see co-sleeping as a medical problem or a health problem. We see it as a parent choice. There are particular cultures where co-sleeping is pretty much ubiquitous. So we in fact see lots of families who co-sleep. And what we say is that it's fine until it's not good. So not so good co-sleeping is where parents and child are getting less sleep than is optimal.
जब एक परिवार नींद क्लिनिक से संपर्क करता है तो डॉक्टर बच्चे के नींद के व्यवहार पर ध्यान देते हैं।
When we look and assess co-sleeping, we see it as a behavior and we do treat it. You know, if parents say we want to reverse it, and how we treat it is dependent a lot on the age of the child.
प्रवासी किशोरों को नींद ना आने की समस्या का सामना करने का खतरा उनके गैर प्रवासी साथियों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि उन्हें एक नए देश में स्थानांतरित होने से जुड़े अतिरिक्त तनावों का सामना करना पड़ता है, जो सीधे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं।
So if a boy or girl has a vulnerability to anxiety or depression, two of the potent things that will bring that out are stress and or sleep deprivation. And one of the beauties of treating that sleep deprivation, it really elevates moods. It makes daytime stuff a lot easier. And it makes these kids much more resilient. The stresses are still there, but they cope with it better if they sleep well.
आयु चाहे जो भी हो, नींद की स्वच्छता बेहद जरूरी है। एसोसिएट प्रोफेसर याकूत कहती हैं कि ये उस क्षण से शुरू हो सकती है जब आप जागते हैं। उन्होंने कुछ सुझाव साझा किए हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे परहेज करना आवश्यक है, जैसे कि देर दोपहर में कैफीन पीना या देर रात को कठोर व्यायाम करना, बिस्तर पर जाने से पहले अपने डिवाइस के इस्तेमाल को सीमित करना और माइंडफुलनेस या विश्राम तकनीकों का उपयोग करना भी आपको एक अच्छी नींद के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है।
If this is like a short term change in their sleep, that's fine, but if it becomes a problem like initiating or maintaining or continuing sleep for certain hours more than 3 times a week for several weeks, that's where they need to go and talk to their GP, because these are signs of either insomnia or another underlying issue that's impacting their sleep.
ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश को SBS न्यूज से जोई थॉमडू और SBS हिंदी से वृषाली जैन ने आपके लिए प्रस्तुत किया है।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।